अभिमन्यु ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला दिया। इप्सिता उसके चेहरे के करीब गई और उसने अपनी नाक अभिमन्यु की नाक से रब करते हुए कहा, आई लव यू सो मच मिस्टर अभिमन्यु नाजवंशी। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात सुनी, उसने इप्सिता के गाल पर कसकर किस करते हुए कहा, आई लव यू टू। और सच बताएं तो हम अब आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभिमन्यु ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला दिया। इप्सिता उसके चेहरे के करीब गई और उसने अपनी नाक अभिमन्यु की नाक से रब करते हुए कहा, आई लव यू सो मच मिस्टर अभिमन्यु राजवंशी। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात सुनी, उसने इप्सिता के गाल पर कसकर किस करते हुए कहा, आई लव यू टू। और सच बताएं तो हम अब आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर मुस्कुराई और उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम भी। इतना बोलते ही अभिमन्यु ने अपना हाथ इप्सिता के कमर के पास ले जाकर उसके लहंगे के पल्लू को हटा दिया। इप्सिता अभिमन्यु के चेहरे की तरफ ही देख रही थी और उसे ऐसा करते देखकर उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गईं। अभिमन्यु ने अपने सिर की पगड़ी उतारी और उसे टेबल पर रख दिया। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। अभिमन्यु इप्सिता के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया और उसने इप्सिता के माथे पर लगे टीके को हटाने के लिए अपना हाथ उठाया। वो इप्सिता के बालों में से उसके मांग टीके को निकालने लगा। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ नहीं देख पा रही थी, उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। अभिमन्यु ने जैसे ही मांग टीका उतारा, इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ धीरे से अपनी नजरें उठाकर देखा। अभिमन्यु इप्सिता के गाल के पास आकर उसे किस करने लगा और उसके कान में बहने हुए झुमकों को उतारने लगा। इप्सिता के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे जैसे अभिमन्यु आगे बढ़ रहा था, इप्सिता काफी ज्यादा नर्वस होती जा रही थी। अभिमन्यु ने इप्सिता के दोनों कानों के झुमकों को उतारा और उसने इप्सिता के करीब जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ अपनी पीठ पर महसूस किया, इप्सिता के हाथ अपने आप ही अभिमन्यु की पीठ पर चले गए। अभिमन्यु ने इप्सिता के गर्दन के पास जाकर उसके गले में पहने हुए नेकलेस को उतारा और नेकलेस को उतारते ही अभिमन्यु ने इप्सिता के गर्दन को चूम लिया। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की किस को अपनी गर्दन पर महसूस किया, इप्सिता के हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा और वो उसके कान के पास जाकर बड़े ही शरारती अंदाज में बोला, क्या हुआ, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? और वैसे भी आज नहीं तो कल हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना ही है ना, तो फिर जब आज की रात हमारे लिए इतनी ज्यादा स्पेशल है तो फिर आज ही क्यों नहीं। अभिमन्यु की बात सुनकर इप्सिता की सांसें थम गई। अभिमन्यु ने इप्सिता के सारे नेकलेस को उतार दिया। अब इप्सिता की गर्दन पर सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु के नाम का मंगलसूत्र था। अभिमन्यु ने जैसे ही उस मंगलसूत्र की तरफ देखा, वो उसके बिल्कुल करीब आया और उसने इप्सिता के मंगलसूत्र को चूमा। इप्सिता उसे ऐसा करते देखकर मुस्कुराई और उसने अभिमन्यु के गाल पर अपना हाथ रखा। अभिमन्यु उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे के चेहरे पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। उन दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था और इप्सिता अभिमन्यु की नजरों में दिख रहे प्यार को महसूस कर पा रही थी, क्योंकि अभिमन्यु ने इप्सिता के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर पकड़ लिया था और वो इप्सिता के हाथ को बड़े प्यार से सहला रहा था। इप्सिता अभिमन्यु से कुछ बोलने जा रही थी कि अभिमन्यु ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, हम जानते हैं आप क्या बोलने वाली हैं, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, उठिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ा। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या कर रहे हैं आप अभिमन्यु? अभिमन्यु ने कहा, हमारे साथ आइए। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता को सीधे चेंजिंग रूम में लेकर गया। इप्सिता ने इस समय काफी हैवी लहंगा पहना हुआ था और अभिमन्यु ने उसकी सारी ज्वेलरी उतार दी थी। इप्सिता के बाल खुले हुए थे और वो बिना ज्वेलरी के भी काफी ज्यादा एलिगेंट और खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु उसके खूबसूरती को निहारने में एक भी कदम पीछे नहीं जा रहा था। उसने इप्सिता के दोनों हाथ पकड़कर उठाया और खड़ा किया। वो चेंजिंग रूम की तरफ उसे लेकर आया। वो दोनों जैसे ही चेंजिंग रूम में पहुंचे, इप्सिता ने सामने लगे मिरर की तरफ देखा। इप्सिता ने इस समय सिर्फ लहंगा और चोली पहनी हुई थी और अभिमन्यु अपनी शेरवानी में उसके पीछे खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने इप्सिता को मिरर के सामने खड़ा किया, अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारी और आपकी जोड़ी सबसे बेस्ट है। इप्सिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और तभी अभिमन्यु ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, है ना इप्सिता, आप हंस क्यों रही हैं? हम इतनी सीरियस होकर बात कर रही हैं और आप हैं कि हंसकर हमारा मूड खराब कर रही हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा और उसने अभिमन्यु का हाथ जो उसके पेट पर था उस पर अपना हाथ रखकर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, अरे बाबा, हम तो सिर्फ आपकी बात से अग्री करने के लिए हंस रहे थे। सही कहा आपने, हम आपके साथ काफी अच्छे लगते हैं। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने कहा, काफी अच्छे नहीं, सबसे अच्छे। हमें नहीं लगता आपसे ज्यादा खूबसूरत और कोई इस दुनिया में होगा। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनी, वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी अभिमन्यु ने कहा, हाँ बिल्कुल, और आपको इतना हैरान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, हमारी नजर में आपसे खूबसूरत इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। यहाँ तक हमें तो लगता है परियां भी आपसे कम खूबसूरत होंगी। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, प्लीज अभिमन्यु, बस भी करिए, इतनी ज्यादा भी हमारी तारीफ करने की जरूरत नहीं है आपको। अभिमन्यु ने इप्सिता की कमर पर अपना हाथ कसते हुए कहा, क्यों क्यों जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप, और वैसे भी हम सच बोल रहे हैं। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी अभिमन्यु ने इप्सिता की गर्दन पर किस किया और इप्सिता ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु सामने शीशे में इप्सिता के चेहरे को देख रहा था। इप्सिता की बंद आंखों और उसे शर्माते हुए देखकर अभिमन्यु हल्के से मुस्कुराया और उसने इप्सिता के पेट पर हल्के से अपनी उंगलियां चलाईं। इप्सिता हल्की सी कसमसाई। इप्सिता को इस तरह बर्ताव करते देखकर अभिमन्यु ने इप्सिता की कमर पर अपना हाथ रखा और इप्सिता के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गईं। इप्सिता पीछे की तरफ झुकी और उसने जल्दी से अभिमन्यु को अपने गले लगा लिया। इप्सिता ने इस समय फुटवेयर नहीं पहने थे, जिस वजह से वो अभिमन्यु के कंधे तक आ रही थी। जब इप्सिता ने अभिमन्यु को गले लगाया तो उसका चेहरा अभिमन्यु के सीने पर था और उसने अभिमन्यु की दिल की धड़कनों को सुना। अभिमन्यु की भी धड़कनें काफी तेज थीं। अभिमन्यु ने इप्सिता की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसकी चोली में लगी डोरी को खोल दिया। इप्सिता के साथ साथ अभिमन्यु के दिल की धड़कनें भी बढ़ गईं। अभिमन्यु ने इप्सिता के ब्लाउज के हुक को खोला और इप्सिता ने कसकर अभिमन्यु को पकड़ लिया। अभिमन्यु ने इप्सिता के गर्दन पर किस किया और वो धीरे धीरे इप्सिता के कॉलर बोन पर पहुंच गया। इप्सिता ने अभिमन्यु के किस को फील किया और वो अभिमन्यु से खुद को दूर नहीं करना चाह रही थी। वो इस समय काफी ज्यादा घबराई हुई थी। अभिमन्यु के हाथ इप्सिता की पीठ पर थे और अभिमन्यु इप्सिता को कंफर्टेबल करने के लिए उसकी पीठ पर हल्के से अपना हाथ रब करने लगा। इप्सिता की दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज हो गईं कि अभिमन्यु उसकी धड़कनों को फील कर पा रहा था। अभिमन्यु ने इप्सिता के कान के पास जाकर धीरे से उसके कान पर किस की और बड़ी ही डीप वॉइस में कहा, इप्सिता आप इतना क्यों घबरा रही हैं, और वैसे भी आज नहीं तो कल हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना ही है ना, तो फिर जब आज की रात हमारे लिए इतनी ज्यादा स्पेशल है तो फिर आज ही क्यों नहीं।
इप्सिता अभिमन्यु की इस बात पर कुछ भी नहीं बोली। अभिमन्यु ने इप्सिता के कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और इप्सिता के चेहरे को अपनी ओर उठाते हुए कहा, इप्सिता आप ठीक है ना, अगर अभी आप कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही हैं तो हमें बता दीजिए, हम यहीं रुक जाएंगे। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु की ये बात सुनी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा। इप्सिता महसूस कर पा रही थी कि अभिमन्यु इस समय उसके करीब आना चाहता है और उसकी आंखों में उसे अपने लिए एक अलग ही तड़प नजर आ रही थी। इसलिए इप्सिता ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हमने कब मना किया आपको। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता के मुंह से ये बात सुनी, वो मुस्कुराने लगा और उसने धीरे से इप्सिता के कंधे पर हाथ रखा और उसके ब्लाउज की स्ट्रैप को उसके कंधे से हटा दिया और उसके कंधे पर हल्के से किस किया। उसके ऐसा करते ही इप्सिता को ऐसा लगा जैसे कि उसकी सांसें रुक गई हों और इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ बहुत कसकर पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता अपने कमरे में समर्थ के साथ थी और समर्थ ने उसे कसकर अपने गले लगाया हुआ था। अर्पिता समर्थ की बाहों में थी और उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। उसने समर्थ का हाथ पकड़ा हुआ था और वो बोली, समर्थ आपको पता है आज जब हमने उस डाइवोर्स पेपर पर साइन किए तो हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी बहुत बड़े गुनाह से आज़ाद हो गए हों। ये शादी हमारे दिल पर एक बोझ की तरह थी जिसे सिर्फ और सिर्फ अकेले हम ही चलाने की कोशिश कर रहे थे। समर्थ ने अर्पिता की बात सुनकर उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसके माथे को चूमते हुए कहा, हम जानते हैं आपने पिछले इन 2 सालों में कितनी तकलीफें सही हैं। हम आपके चेहरे को देखकर हर बार समझ जाते थे कि आप कितनी ज्यादा तकलीफ में हैं। हमें वो जयराज कभी भी पसंद नहीं था। हम तो आपकी शादी वाले दिन भी यही सोच रहे थे कि किस तरह से हम आपकी इस शादी को रोक सकें, लेकिन हम नहीं रोक पाए। सच बताएं तो जब आपकी शादी हुई तो उसके कितने दिनों तक हम